कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। भजले गोविंदा गोपाल रे, भजले गोविंदा गोपाल रे। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद नाम है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। भजले गोविंदा गोपाल रे, भजले गोविंदा गोपाल रे। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री घन श्याम को बारंबार प्रणाम है। भजले गोविंदा गोपाल रे, भजले गोविंदा गोपाल रे, लूट लूट दधि माखन खायो ग्वाल बाल संघ धेनु चरायो, लूट लूट दधि माखन खायो ग्वाल बाल संघ धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। भजले गोविंदा गोपाल रे, भजले गोविंदा गोपाल रे, द्रुपद सुता की लाज बचायो ग्रह से गज को फंद छुड़ायो, द्रुपद सुता की लाज बचायो ग्रह से गज को फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। भजले गोविंदा गोपाल रे, भजले गोविंदा गोपाल रे, अजले गोविंदा गोपाल रे भजले गोविंदा गोपाल रे भजले गोविंदा गोपाल रे राधे गोविंद राधे गोपाला भज राधे गोविंद राधे गोपाला राधे गोविंद राधे गोपाला राधे गोविंद राधे गोपाला राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद राधे गोपाला भज राधे गोविंद राधे गोपाला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai. Jai Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupad, 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 Jaya Jaya Prabhupad. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Gaur Premanande, Shri Krishna Janmashtami Mahotsav Ki Jai. Hare Krishna. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam. Vandeham Shri Guruh Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padang Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namom Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्य भगवान् व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम् तत्रादरहन परः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन दिवस पर आप सबका श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में स्वागत है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, लेकिन भगवान का जन्मदिन हमारे जन्म की तरह नहीं होता है। भगवान यहां अवतीर्ण होते हैं सुंदर लीला प्रकट करने के लिए, जिनके चित्र आपने थोड़े ही समय यहां पर देखे, और ऐसे सुंदर लीलाओं के द्वारा वो हम सब का मन आकर्षित करना चाहते हैं। आपने श्रीमद् भागवत इस ग्रंथ का नाम अवश्य सुना होगा। भगवद गीता वो ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर। श्रीमद् भागवत वो संवाद है जो कि सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के बीच में हुआ, गंगा जी के तट पर। और ये संवाद गंगा के तट पर इसलिए हुआ कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मर जाने का एक श्राप मिला था, तो तुरंत अपना राज्य को त्याग दिया राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे, और आप तो जानते ही हैं कि अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। तो राजा परीक्षित किसी वकील के पास नहीं गए, डॉक्टर के पास नहीं गए, सीधे अपने राज्य आदि को त्याग कर गंगा के तट पर गए। उनका विचार ये था कि अब जीने के लिए 7 दिन बचे हैं, तो इन 7 दिनों में मैं पूरा उपवास रखूंगा और केवल भगवान के बारे में सुनूंगा। तो जब वो वहां गए तो सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रश्न किए। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ कर ली। राजा परीक्षित प्रश्न करते गए, सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते गए। ऐसे 9 स्कंध पूरे हो गए। 10वें स्कंध की शुरुआत थी। 9वें स्कंध के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने अनेक वंशों का वर्णन किया था और विशेष करके यदुवंश के वर्णन तक वो पहुंचे थे। तो राजा परीक्षित जानना चाहते थे उन श्री कृष्ण के बारे में जो यदुवंश में प्रकट हुए थे। और जब राजा परीक्षित ने कहा कि मैं उन कृष्ण के बारे में और सुनना चाहता हूं जिनकी कृपा से मेरे दादा आदि जो पांडव हैं वो कौरवों के प्रति युद्ध में विजय प्राप्त कर पाए। भगवत गीता में पहले ही अध्याय में ये हम देखते हैं कि युद्ध के शुरुआत के पहले दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से चर्चा करते हैं। वो सेनाओं के बीच में आके दोनों सेनाओं को देखना चाहते हैं, पांडवों की शक्ति कितनी है और हम सब कौरवों की शक्ति कितनी है। पांडवों की शक्ति देखने के बाद दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं, लेकिन हे आचार्य, हमारी शक्ति कोई कम नहीं है, बल्कि हमारी सेना की शक्ति तो असीमित है, क्योंकि हमारी सेना का नेतृत्व, इसकी रखवाली भीष्म कर रहे हैं, और भीष्म जैसा योद्धा कहां मिल सकते हैं। साथ साथ द्रोण हैं, आप स्वयं हैं, यहां कर्ण है, जयद्रथ है, कृप है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा हैं। और जब भीष्म देव हमारे सेना का नेतृत्व संभालेंगे तो पांडव जिनके नेता भीम हैं वो क्या कर पाएंगे। भीष्म के सामने भीम तो कुछ भी नहीं है। तो दुर्योधन भौतिक दृष्टि से देख रहा था, उसे लगा कि हमारी सेना ज्यादा शक्तिशाली लग रही है, हमारी सेना में सैनिकों की संख्या, घोड़ों की संख्या, हाथियों की संख्या, ये सब अधिक है, इसलिए हमारी जीत होनी है। परंतु वो एक बात को नहीं जानता था कि कौरवों के पक्ष में श्री कृष्ण नहीं थे, श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। भगवत गीता का अंतिम श्लोक यही है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। संजय धृतराष्ट्र को गीता सुना रहे हैं और श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद जो हुआ उसका वर्णन करने के बाद संजय कहते हैं कि हे राजन, अभी युद्ध शुरू होने वाला है, परंतु मैं पहले से ही आपको कह देता हूं कि पांडवों की जीत निश्चित है। क्यों? क्योंकि उनके पक्ष में योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और साथ साथ कृष्ण के साथ कृष्ण के भक्त अर्जुन हैं, जो गांडीव बाण धारण किए हुए हैं। तो जहां कृष्ण और कृष्ण के भक्त हैं वहां अन्यों का विजय भला कैसे हो सकता है। तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, ऐसे मेरा मत है कि विजय प्राप्त हो जाएगा, वहां नीति होगी, ऐश्वर्य होगा, यश होगा, सब कुछ हो जाएगा जहां श्री कृष्ण उपस्थित हैं। परंतु दुर्योधन को श्री कृष्ण में विश्वास नहीं था। दुर्योधन एक भौतिकतावादी व्यक्ति था। उसके मन में केवल भौतिक दृष्टि के विचार थे। वो सोचता था हमारे सैनिक ज्यादा हैं तो जीत हमारी होगी। जब युद्ध की तैयारियां चल रही थीं, दोनों पांडव और कौरव अनेक राजाओं को विश्व भर में अपने अपने पक्ष में लेने का प्रयास कर रहे थे। दुर्योधन ने भी अनेक राजाओं को अपने पक्ष में लिया और सर्वप्रथम दुर्योधन ने सोचा कि मैं हस्तिनापुर से द्वारका चले जाऊंगा। द्वारका में मैं श्री कृष्ण से निवेदन करूंगा कि वो हमारे पक्ष में आ जाए, और यदि वो हमारे पक्ष में आ जाए या कम से कम पांडवों के पक्ष में नहीं रहे तो हमारी जीत तो निश्चित है। वो जानते थे कि श्री कृष्ण कितने बड़े योद्धा हैं, और वो जानते थे कि श्री कृष्ण अर्जुन के साथ और पांडवों के साथ नहीं रहेंगे तो पांडवों की हार निश्चित होगी। तो जब दुर्योधन वहां पहुंचा तो ठीक उसी समय अर्जुन भी पहुंच गया। बल्कि अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में जाके बैठा। श्री कृष्ण उस समय शयन कर रहे थे। दुर्योधन ने आके सीधा श्री कृष्ण के सर पे पास बैठना ठीक समझा, जो कि मर्यादा का व्यतिक्रमण था। फिर भी दुर्योधन को ऐसे कोई विचार नहीं हुआ करते थे। तो जब श्री कृष्ण की आंखें खुली तो पहले श्री कृष्ण ने अपने पैर में अपने चरणों में बैठने वाले अर्जुन को देखा, बाद में दुर्योधन को देखा। उन्होंने दोनों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो दोनों ने कहा कि अब युद्ध होने वाली है और हम आपकी सहायता चाहते हैं। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, आप दोनों को यह चयन करना है कि आपको मेरी सेना चाहिए या आप मुझे चाहते हो सेना के बिना। तो क्योंकि अर्जुन पहले आया, मैंने अर्जुन को पहले देखा, मैं अर्जुन से पूछूंगा। तो अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए, आपकी सेना हो या न हो लेकिन मुझे आप चाहिए। दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने मन ही मन में सोचने लगा कहां श्री कृष्ण की द्वारका की नारायण सेना जो इतनी मजबूत है, इतनी बलवान है, और ये अर्जुन की बुद्धि अल्प है, वो कृष्ण को अकेले मांग रहे हैं। कृष्ण तो एक व्यक्ति है, भले वो शक्तिशाली हो परंतु कृष्ण की सेना भी तो कोई कम नहीं है। तो हम श्री कृष्ण की सेना को लेंगे तो हमारी जीत तो निश्चित होगी। तो दुर्योधन फिर से भौतिक दृष्टि से देख रहा था। वो ये नहीं जानता था, या जानते हुए भी उसके मन में श्रद्धा नहीं थी कि श्री कृष्ण परम सत्य और भगवान है, और जहां भगवान उपस्थित हैं, जिस पक्ष में वो हैं, उस दल की तो जीत निश्चित ही होनी है। तो दोनों अपने अपने निर्णय से प्रसन्न होकर वापस हस्तिनापुर चले गए। और फिर अंत में हम तो जानते ही हैं कि पांडवों की जीत हो गई, कौरव हार गए, पांडवों को अपना राज्य मिल गया वापस। कहने का तात्पर्य है कि दुर्योधन की दृष्टि भौतिक थी, पांडवों की दृष्टि आध्यात्मिक थी। तो राजा परीक्षित अब सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे थे दशम स्कंद के प्रारंभ में कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, भगवान श्री कृष्ण के कारण ही, उनकी कृपा से ही मेरे दादागण जो पांडव हैं वो कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त कर पाए, नहीं तो यह संभव नहीं था। क्योंकि कौरवों की सेना में इतने बड़े बड़े योद्धा थे जैसे भीष्म, द्रोण आदि, जिनका सामना करना पांडवों के लिए तो असंभव था। भीष्म और द्रोण ऐसे मछली थे
जो बहुत बड़े बड़े होते हैं जैसे तिमिंगल मछली, और वो इतने बड़े होते हैं कि समुद्र के बड़े मछलियों को भी आसानी से निगल लेते हैं। और पांडव वो तो छोटे मछली के समान थे भीष्म द्रोण आदि के तुलना में, फिर भी कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने में ज्यादा कठिनाई पांडवों को नहीं हुई। जैसे गाय के बछड़े के खुर के नीचे जो जल होता है, उतने से जल को पार करना कितना आसान होता है व्यक्ति के लिए, उतना ही आसान पांडवों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीत प्राप्त करना हुआ। और ये इसलिए है कि श्री कृष्ण की कृपा वहां थी। तो मैं उन श्री कृष्ण के बारे में मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि श्री कृष्ण की कथा जो है वो इतनी अच्छी है कि हृदय को बहुत संतुष्ट करती है, हृदय के कष्ट को, तनाव को, दुख को तुरंत मिटा देती है। फिर राजा परीक्षित ने एक श्लोक कहा, निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधाश्रोत्र मनोभिरामात् गौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव जी, जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में इस भौतिक संसार को भोग करने की कामना को त्याग दिया है, जो अभी थक चुके हैं भौतिक सृष्टि का भोग करने का प्रयास से, जो जान चुके हैं कि भौतिक संसार के विषयों में, इस भोग वृत्ति में कोई सुख नहीं है बल्कि दुख और कष्ट ही है, निवृत्त तर्षय, तर्षय मतलब जो तृष्णा है, जो प्यास है, और चाहिए और पैसा और पैसा और सुख और भोग, और बड़ा गाड़ी चाहिए और बंगला चाहिए, बड़ा आदमी और होना है, तो ये जो संसार का, संसार में आगे बढ़ने की एक तृष्णा होती है, प्यास होती है, निवृत्त, जो ऐसे प्यास से निवृत्त हो चुका है, जो समझ चुका है कि ये सब बेकार है, व्यर्थ है, तो वो क्या करता है, वो भगवान की कथाओं को हृदय पूर्वक स्वीकार करता है। क्योंकि ये जो कृष्ण कथा है, ये सारे संसार के लिए एक औषधि है, महा औषधि है, भव औषधि, श्रोत्र मनो अभिरामात्। जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं, राजा परीक्षित कहते हैं, तो हमारे चित्त को, हमारे हृदय को, हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है, हृदय प्रसन्न हो जाता है, हृदय के जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी बुरी आदतें और प्रवृत्तियां हमारे अंदर हैं, और जो भी भय दुख चिंता आदि है, वो सब चले जाता है केवल भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनने से। इसलिए ये मूल औषधि है। इस दुनिया में तरह तरह के औषध, तरह तरह की बीमारियां हैं, रोग, कॉलेरा है, टीबी है, पीलिया है, खांसी बुखार तो है ही, अनगिनत विविधता में रोग यहां पर पाए जाते हैं, और हर बार कोई नई दवाई का आविष्कार होता है तो फिर कोई नया रोग ढूंढा जाता है, उसके लिए कोई दवाई ढूंढते हैं, फिर और कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। ऐसे मनुष्य समाज में देखा जा रहा है कि ये एक निरंतर संघर्ष चलते आ रहा है, क्योंकि प्रकृति एक के बाद एक लगातार ऐसे नए नए रोगों को भेजती रही है। आज हमें लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है, इसको यदि दूर करेंगे तो सारे समाज में सुख हो जाएगा। मनुष्य प्रगति कर रहा है क्योंकि मनुष्य ने इतने सारे नए नए औषधि ढूंढ निकाले हैं, इतने बड़े बड़े अस्पताल हुए हैं, और इतने सारे डॉक्टर वैद्य हैं, और अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, बड़े बड़े यंत्र आदि पाए जाते हैं मरीज की परीक्षा करने के लिए, तो अभी हम प्रगति कर रहे हैं और अवश्य मनुष्य को हम सुखी बनाएंगे, परंतु ऐसे नहीं होता है। जितना ज्यादा हमारा विज्ञान बढ़ते जाता है उतना ही ज्यादा हम देखते हैं बीमारियां बढ़ती जाती हैं, और ऐसे कितने सारे बीमारी आती जाती हैं जिनका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। इस प्रकार से संसार के अंदर जो रोग हैं, तरह तरह के रोग, वो सब छोटे मोटे रोग हैं, आते हैं जाते हैं, परंतु इन सब का एक मूल रोग है जिसके कारण ये सारे रोग हो जाते हैं, और वो है कि हम भगवान श्री कृष्ण को भूल चुके हैं, और इसलिए हम इस भौतिक सृष्टि में रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया में सारे जीव जो मेरा अंश हैं सनातन रूप से, मुझे भूलकर इस भौतिक सृष्टि में भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए प्रकृति के कड़े संघर्ष नियमों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो भगवान का भुलावा होने के कारण हम जो कि आत्मा हैं, हम जो कि आध्यात्मिक हैं, भगवान के अंश हैं, हम यहां इस भौतिक सृष्टि में फेंक दिए जाते हैं, और यहां हम सब आत्माओं को यह भौतिक देह धारण करना पड़ता है। भगवत गीता का प्राथमिक ज्ञान ही यही है कि हम ये आत्मा हैं, ये देह नहीं है। ये भौतिक शरीर जड़ पदार्थों का बना हुआ है, परंतु हमारा कोई संबंध नहीं है इस भौतिक शरीर से। एक शरीर का अंत होता है, हमें दूसरा शरीर स्वीकार करना पड़ता है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे अनादि काल से न जाने कितने शरीर हम बदल चुके हैं। तो जब तक ये भौतिक शरीर हमारे पास रहेगा, तब तक हम इन दुखों से मुक्त नहीं हो सकेंगे। जहां ये शरीर है वहां पे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये चार चीजें रहेंगी, और जहां ये चार चीजें रहेंगी भला सुख कैसे हो सकता है। इसलिए कृष्ण कथा ये मूल औषधि इसलिए है कि वो मूल रोग के लिए एक औषधि है। कृष्ण कथा सुनते रहने से हमारा हृदय में, हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यस्याम वाय श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। भागवत में कहा गया है कि जब हम श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है उनके प्रति, और साथ साथ शोक, मोह और भय, ये तीनों चीजों का निवारण हो जाता है, ये नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम सबको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, जो कि कृष्ण कथा श्रवण करने से शुरू होता है, कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करने से शुरू होता है। और फिर राजा परीक्षित कहते हैं, क उत्तम श्लोक गुणानुवादात। भगवान श्री कृष्ण का नाम उत्तम श्लोक है, जिनको उत्तम श्लोक में वर्णन किया जाता है। तो ऐसे उत्तम श्लोक श्री कृष्ण की सुंदर कथाओं को कौन नहीं सुनेगा? कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपना हित चाहते हुए भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा और उनकी कथाओं को नहीं सुनेगा? लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं, हाँ ऐसे लोग हैं जो कृष्ण की कथा सुनना नहीं चाहते हैं। विना पशुघ्नात, वो कहते हैं कि जो लोग बहुत क्रूर होते हैं, पशुओं की हत्या करते हैं, उनका हृदय इतना कठोर हो जाता है कि कि वो भगवान की बातें सुन नहीं पाते हैं, उनके हृदय में वो आकर्षण नहीं होता, वो झुकाव नहीं होता है भगवान के प्रति, केवल संसार का भोग करने की रुचि उनके मन में बढ़ती रहती है। और पशुघ्न वो भी है जो अपने आध्यात्मिक जीवन की परवाह न करके केवल भौतिक प्रगति के पीछे लगा रहता है। वो सोचता है कि यही मेरे जीवन का की सफलता है। तो केवल ऐसे लोग श्री कृष्ण की कथा के प्रति रुचि नहीं रखेंगे, ऐसा राजा परीक्षित कहते हैं। तो हमारे लिए कितना एक अनुसरणीय उपदेश है, ये श्रवणीय उपदेश है। हम सबको बहुत ध्यान से सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित के संवाद को सुन के भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण हमारे हृदय में जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। यदि भगवान श्री कृष्ण यहां अवतार नहीं लेते, यहां भौतिक जगत में पृथ्वी लोक में प्रकट नहीं होते, तो उनके बारे में सुनने के लिए विषय हमें कहां से मिलते। हम तो केवल संसार के विषयों के बारे में ही बोलते रहते, सुनते रहते, सोचते रहते। लेकिन अब जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए इस भौतिक सृष्टि में, सुंदर लीलाएं उन्होंने की, तो हमें विषय अनेक प्राप्त हुए हैं उनके बारे में सुनने के लिए। जब श्री कृष्ण कंस के कारागार में प्रकट हुए मथुरा में, उसके पहले और कई बच्चे हुए थे, उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव जब विवाह के बाद ही अपने घर जा रहे थे, कंस अपनी बहन को रथ पे सवार होकर कराके घर पहुंचाने जा रहा था, जब एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने ये कहा कि हे मूर्ख कंस, तुम नहीं जानते हो कि जिस बहन को तुम आज बड़े प्रेम से उसके नए घर में ले जा रहे हो, उसी बहन का आठवां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसको बड़ा तनाव हुआ, क्रोध हुआ, और तत्क्षण कंस ने अपने तलवार को उठाया और अपनी बहन देवकी के बाल पकड़ लिए और उसकी हत्या करने जा ही रहा था कि किसी न किसी तरह वसुदेव ने तर्क के माध्यम से समझा बुझाकर कंस को अपनी बहन को मारने से रोक दिया, बड़े कठिनाई से। और एक ही रास्ता था जो वसुदेव ने अपनाया, उसके बिना कंस अपनी बहन को छोड़ता नहीं था। वसुदेव ने कंस से कहा कि मैं हर एक पुत्र को तुम्हारे पास आके दूंगा, और तुम्हें डर तो आठवें बच्चे से है, तो एक के बाद एक जितने भी हमारे बच्चे होंगे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो कंस को पूरा विश्वास था, हालांकि कंस असुर था, परंतु वो जानता था कि वसुदेव एक धर्मपरायण और सज्जन व्यक्ति है। वो जब अपना वचन देता है कभी अपने वचन को तोड़ेगा नहीं। परंतु जब पहली बार वसुदेव एक बच्चे को लेकर आए, कंस को करुणा हुई, लेकिन बाद में नारद जी ने आके बताया कि बच्चा कोई भी हो सकता है जो तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा, तो कंस ने एक के बाद एक जितने भी देवकी और वसुदेव को बच्चे हुए बड़ी क्रूरता से उनकी हत्या की। ऐसे 6 बच्चे एक के बाद एक आए, 6 पुत्र थे, 6ों की हत्या कंस ने क्रूरता से कर ली। उसके बाद में 7वीं बार जब माता देवकी गर्भवती हुई, तो उनके हृदय में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम वो प्रकट हुए। कृष्ण के आदेश के अनुसार उनकी आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने बलराम जी को देवकी के गर्भ से, जो मथुरा में थी, गोकुल में स्थित नंद महाराज के रक्षण में रोहिणी देवी के गर्भ में स्थानांतरित किया और बाद में बलराम का जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ और वो रोहिणी के पुत्र माने जाते हैं। यहां मथुरा में सबको ऐसे लगा कि माता देवकी का गर्भपात हो गया है, सातवां बच्चा जन्म नहीं ले पाया, ऐसे सबको लगा। और फिर आठवीं बार श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो वैसे ये छह पुत्रों की हत्या क्यों हुई थी? वैसे ये छह बच्चे दो जन्म पहले एक ऋषि के पुत्र थे, मरीचि, और उन्होंने उनके परम पिता ब्रह्मा जी के विरुद्ध कोई बड़ा अपराध किया था, इसलिए उनको श्राप मिला था कि तुम असुर योनि में पैदा हो जाओगे। तो असुर योनि में पैदा तो हुए। उनके पिता का नाम था कालनेमी। कालनेमी भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझता था। जब ये कालनेमी के बच्चे तपस्या करने गए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और लड़कों ने मांगा कि हमें ये वरदान दीजिए कि न कोई मनुष्य, यक्ष, राक्षस, पशु, पक्षी आदि हमको मार नहीं सके। जब ये वापस आए तो उनके दादा हिरण्यकश्यप को पता चला। हिरण्यकश्यप ने भी तपस्या की थी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके शक्तियां प्राप्त करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे इस जीवन के पिता से ही होगी और अगले जन्म में वो माता देवकी के छह पुत्र के रूप में जन्म लिए और कालनेमी असुर जो पूर्व जन्म में उनके पिता थे वो अभी कंस बन गया और कंस ने अपने ही छह पूर्व जन्म के बच्चों की हत्या इस जन्म में कर दी। तो देखिए ये दुनिया कैसी है। क्योंकि हम पूर्व जन्म के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, नहीं हम ये जानते हैं कि भविष्य में हम पुनर्जन्म में अगले जन्म में कौन होंगे। हम केवल इसी जन्म को सब कुछ मानते हैं और सोचते हैं कि इस एक जन्म में हम जितना हो सके उतना पैसे कमाएं, खूब भोग करें, फिर हमारा जीवन सफल होगा। परंतु हम नहीं जानते हैं कि पिछले जन्म में भी हमने यही प्रयास किया था और परिणाम क्या हुआ? पुनर्जन्म हुआ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, यही हमें दर्शन करना पड़ा, बुढ़ापा, बीमारी, जन्म और मृत्यु, और ऐसे चलता रहेगा। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार एक कहानी बताई थी कि एक बार एक बहुत अमीर व्यक्ति था। जीवन भर उसने बहुत परिश्रम किया था पैसे कमाने के लिए और इतना परिश्रम करता था कि उस पैसे का भोग भी नहीं कर सकता था, नहीं अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त होता था उसे। तो एक बार हुआ ये, कोई बीमारी आ गई, उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपने बच्चों को बहुत बहुत पैसे दिलाकर अच्छे अच्छी जगह से पढ़ाई वगैरह कराई थी, वो भी व्यवसाय संभालने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन ये आदमी इस घर से, इस परिवार से इतना आसक्त हो गया था कि उसका पुनर्जन्म उसी वातावरण में मिला। यम्यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे व्यक्ति की चेतना मृत्यु के समय रहती है वैसे ही उसे पुनर्जन्म मिलता है, अगले जन्म में उसे एक शरीर मिलता है, और अंत काल में जो हमारी चेतना होगी वो किस पर निर्भर है? जो हम जीवन भर कार्य करते हैं उस पर निर्भर है। तो ये व्यक्ति का जन्म अपने पूर्व जन्म के घर के बंगले के बिल्कुल सामने एक मोची के घर में हुआ। और कहां एक इतना बड़ा महल जैसा घर पूर्व जन्म में, और अब एक बहुत गरीब मोची के घर में उसने जन्म लिया। परंतु किसी न किसी तरह से उस बच्चे को याद था उसका पूर्व जन्म कि अरे मैं तो यहां, ये तो मेरा घर था और है, और ये सब मेरे बच्चे हैं। तो जब वो थोड़ा बोलने लायक हो गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, तो एक दिन जब उनके लड़के बड़े बड़े गाड़ी में बैठ के बाहर जा रहे थे, वो बच्चा उनके पास आया और जोर से कहने लगा, अरे बेटो मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो स्वाभाविक है कि उन बच्चे ने थोड़ी विश्वास कर सकते थे। हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आके बोले मैं तुम्हारा पिछले जन्म का पिता हूं, हम तो मानेंगे तो नहीं। तो इन्होंने भी नहीं माना, लेकिन यह सत्य था, वो बच्चा जो कह रहा था वो सही था। तो उन लड़कों ने सोचा ये कौन आ गया बच्चा, आके हमको बता रहा है कि ये हमारा पिता है। तो उन्होंने बहुत बुरी तरह से उसको मार के भगा दिया वहां से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो विडंबना कैसी है कि उस व्यक्ति ने इतना परिश्रम किया था उसके पूर्व जन्म में केवल इन बच्चों को बड़ा करने के लिए, अपने परिवार को इतने सुख सुविधा प्रदान करने के लिए, और आज यही बच्चे उसको घर से बाहर बुरी तरह से डांट कर निकाल रहे हैं। कैसी विडंबना! इससे व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हर एक जन्म में हमारे परिवार होते हैं, और हमारे पारिवारिक और सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाने में हम इतने मग्न हो जाते हैं कि हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण से है वो भूल जाते हैं। और फिर यही हम कहते हैं कि हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं है। ऐसे समय नहीं है कहते कहते न जाने कितने हमारे जन्म बीत गए, और इसलिए हम जन्म मृत्यु के चक्र में अभी तक अटके हुए हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो कम से कम अभी जब हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे जितने भी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनको अवश्य हमें निभाना चाहिए जिम्मेदारी से, परंतु कृष्ण भावना में, ये समझ कर कि ये सब कृष्ण की संपत्ति है, मेरे परिवार के सदस्य, मेरा धन, मेरा गाड़ी, मेरे बंगला, मेरी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा, सब कुछ ये श्री कृष्ण की संपत्ति है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए इन सब चीजों का प्रयोग मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में ही करना चाहिए, मेरे परिवार के सदस्यों की रक्षा करनी चाहिए इसलिए कि श्री कृष्ण ने मुझे ये दिया है। परंतु केवल रक्षा करना नहीं, उन सबको कृष्ण की भक्ति में लगाना, ये सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है हम सबकी। खुद भी भक्ति में लग जाना और परिवार के सदस्यों को भी कृष्ण भक्ति में लगाना। इस तरह से ये संदेश हमें मिलता है कि भगवान के प्रति जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण संबंध है उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। बहुत गंभीरता पूर्वक इस बात को हमें ग्रहण करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने ऐसे सुंदर उपदेश भगवद गीता में दिया है हम सबके उद्धार के लिए। हमें यहां पर आकर श्री कृष्ण के वृंदावन धाम का ही प्राकट्य दिखाई दे रहा है। आज भक्तों ने इतना परिश्रम करके सुंदर श्रृंगार मंदिर का किया है, सिंहासन का किया है, भगवान के श्री मूर्तियों का किया है, जगह जगह पे एक दिव्य वातावरण का निर्माण हुआ है। आशा करते हैं कि इस दिव्य वातावरण में आप सबको बड़ा आनंद आया हुआ होगा। तो ये एक आध्यात्मिक जगत की एक झलक है छोटी सी। तो आप कल्पना कीजिए यदि हम सब कृष्ण भक्ति करेंगे इस दुनिया में तो ये दुनिया भी वैकुंठ हो जाएगा। आज कितने लोग भगवान कृष्ण का दर्शन करने आए हैं मंदिर में, कितने लोग यहाँ कथा सुनने बैठे हैं, कितने लोग कीर्तन में शामिल हो रहे हैं, कितनी भावुकता से, कितने हृदय पूर्वक भक्ति से लोग यहाँ आए हैं। इसलिए हम विचार कर रहे थे कि काश हर दिवस जन्माष्टमी होता तो लोग कृष्ण भक्ति में अच्छी तरह से लग जाते, और ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। वास्तव में हमें हर दिन को जन्माष्टमी बनाना है हमारे घर में। जन्माष्टमी क्या है? भगवान का प्राकट्य दिवस। तो यदि हम अपने अपने घरों में हम ये भक्ति करेंगे, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हम पढ़ेंगे, जैसे गीता भागवत है, हम भगवान को नैवेद्य में रख के शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ मिलके कीर्तन करेंगे, कुछ कथा सुनेंगे, और जब भी अवसर मिले कम से कम हफ्ते में एक बार, हो सका तो रोज, नहीं हो सका तो कम से कम एक बार भगवान के भक्तों के संग में आकर, जैसे आज आप आए हैं, भगवान की कथा को सुनना, भगवान का नाम लेना और सेवा करना बड़ी नम्रता से, भक्ति भाव से। यदि हम ऐसा करेंगे तो नित्य रूप से भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हमारे लिए हर दिन जन्माष्टमी का दिन होगा, तो फिर हर दिन हमारा दिव्य आनंद से भरा हुआ होगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आनंद नहीं चाहता है? परंतु लोग गलत जगह में इस आनंद को ढूंढ रहे हैं। इस संसार में कोई आनंद नहीं है, संभव नहीं है, कृष्ण भगवान ने कह दिया है। आनंद है केवल भगवान के भक्ति के पथ में। इसलिए आप सबसे हम नम्र निवेदन करते हैं कि आप भी इस कृष्ण भक्ति के पथ को बड़े गंभीरता से स्वीकार कीजिए। साथ साथ आप सबका हम हार्दिक धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आप अपने अपने घरों से, हो सकता है कि बहुत दूर भी है आपका घर, आप यहां कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए पधारे हैं। आशा करते हैं कि आप राधा गोकुलानंद मंदिर को अपना घर समझकर यहां बार बार आते रहेंगे, केवल जन्माष्टमी के दिन ही नहीं परंतु बार बार लगातार आएंगे और अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपने मनुष्य जीवन को सफल करेंगे। जिन भक्तों ने इतनी सेवा करके आज का दिन हमारे लिए इतना रमणीय बनाया है, उन सब भक्तों को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं और उनका उनके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं। तो अभी 5 मिनट के अंदर ही, 3-4 मिनट में 12 बजेंगे। ऐसे बताया जाता है कि ठीक रात को 12 बजे इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। तो अभी ठीक 12 बजे रात को आरती होगी भगवान की। तो आपसे निवेदन है कि बड़े अच्छे ढंग से गड़बड़ न करते हुए, एक दूसरे को किसी को धक्का न देते हुए, ताकि किसी को चोट नहीं पहुंचे, बड़े सभ्य रीति से, बड़े सौम्य रीति से, आराम से एक एक करके आप जाएं, जैसे आपको बताया जाए, जैसे आपको आदेश दिए जाएंगे भक्तों के द्वारा, वैसे वैसे कृपया आप करें, ताकि सभी को आरती कीर्तन का अच्छा लाभ मिल सके और आरती के बाद फिर प्रसाद की व्यवस्था सबके लिए की गई है। अवश्य प्रसाद को पाकर ही आप सब जाइएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।
कृष्ण, मंदिर के सामने थोड़ा भीड़ मत कीजिएगा। मुझे बाहर की प्रारंभ हो गया, लेकिन धीरे से जो बाहर जाने का मार्ग है वहां से आप सब बाहर जाइएगा। सब पहले दर्शन है, शांति से लीजिएगा, भीड़ मत कीजिएगा।